आप सभी श्रोताओं को निशिकांत का प्रणाम। आज का विषय है
प्रेमचंद की कहानी होली का उपहार। मैकूलाल अमरकांत के घर शतरंज खेलने आए तो देखा वह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछा, कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो क्या भाई? फुर्सत हो तो आ जाओ, दो चार बाजियां हो जाए। अमरकांत ने संदूक में आईना कंघी रखते हुए कहा, नहीं भाई, आज तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कल जरा ससुराल जा रहा हूँ, सामान अमान ठीक कर रहा हूँ। मैकू, तो आज ही से क्या तैयारी करने लगे? चार कदम तो है, शायद पहली बार जा रहे हो। अमर, हाँ यार, अभी एक बार भी नहीं गया। मेरी इच्छा तो अभी जाने की न थी, पर ससुर जी आग्रह कर रहे हैं। मैकू, तो कल शाम को उठना और चल देना, आधे घंटे में तो पहुंच जाओगे। अमर, मेरे हृदय में तो अभी भी जाने कैसी धड़कन हो रही है। अभी तो कल्पना में पत्नी मिलन का आनंद लेता था, अब वह कल्पना प्रत्यक्ष हुई जाती है। कल्पना सुंदर होती है, प्रत्यक्ष क्या होगा कौन जाने। मैकू, तो कोई सौगात ले ली है? खाली हाथ न जाना, नहीं मुंह की सीधा न होगी। अमरकांत ने कोई सौगात न लिया था, इस कला में वह अभी अभ्यस्त न थे। मैकू बोला, तो अब ले लो भाई, भले आदमी पहली बार जा रहे हो, भला वह दिल में क्या कहेगी। अमर, तो क्या चीज़ ले जाऊं, मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। कोई ऐसी चीज़ बताओ जो कम खर्च में बालनशील हो, क्योंकि घर में रुपए भी नहीं हैं, दादा ने रुपए मांगे हैं। मैकू, माँ बाप से अलग रहता था, व्यंग करके बोला, जब दादा ने रुपए मांगे हैं तो भला कैसे टाल सकते हो। दादा का रुपए मांगना कोई मामूली बात तो है नहीं। अमरकांत ने व्यंग न समझकर कहा, हाँ, इसी वजह से तो मैं इस होली के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए, मगर जब कोई सौगात ले जाना भी जरूरी है तो कुछ न कुछ तो ले जाना ही पड़ेगा। हल्के दामों में कोई चीज़ बतलाओ। दोनों मित्रों में विचार विनिमय होने लगा। विषय बड़े ही महत्व का था, उसी आधार पर भावी दाम्पत्य जीवन सुखमय या उसके प्रतिकूल हो सकता था। पहले दिन बिल्ली को मारना अगर जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है तो यह पहला उपहार क्या कम का महत्व है। देर तक बहस होती रही पर कोई निश्चय न हो सका। उसी वक्त एक पारसी महिला नए फैशन की साड़ी पहने हुए मोटर पर निकल गई। मैकूलाल ने कहा, अगर ऐसी साड़ी ले लो तो वह जरूर खुश हो जाएगी। कितनी सूफियाना रंग है और वजह कितनी निराली, मेरी आँखों में तो जैसे बस गई है। हाशिम की दुकान से ले लो, 25 रुपये में आ जाएगी। अमरकांत भी उसी साड़ी पर मुग्ध हो रहा था। वधु यह साड़ी देखकर कितनी प्रसन्न होगी और उसके गोरे रंग पर यह कितनी खिलेगी, वह इसी कल्पना में मग्न था। बोला, हाँ यार, यह पसंद तो मुझे भी है, लेकिन हाशिम की दुकान पर तो पिकेटिंग हो रही है। तो होने दो, खरीदने वाले तो खरीदते ही हैं, अपनी इच्छा है, जो चीज़ चाहे खरीदते हैं, इसी के बाबा का साझा है। अमरकांत ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, यह तो सत्य है, लेकिन मेरे लिए स्वयंसेवकों के बीच से दुकान में जाना संभव नहीं है, फिर तमाशाइयों की हरदम भीड़ तो लगी रहती है। मैकू ने मानो उसकी कायरता पर दया करके कहा, तो पीछे के द्वार से चले जाना, वहाँ पिकेटिंग नहीं होती, किसी देसी दुकान पर न मिलेगी, हाशिम की दुकान के सिवाय और कहीं न मिलेगी। संध्या हो गई थी, अमीनाबाद में आकर्षण का उदय हो गया था, सूर्य की प्रतिभा विद्युत प्रकाश के बुलबुलों में अपनी स्मृति छोड़ गई थी। अमरकांत दबे पांव हाशिम की दुकान के सामने पहुंचा, स्वयंसेवकों का धरना भी था और तमाशाइयों की भीड़ भी। उसने 2-3 बार अंदर जाने के लिए कलेजा मजबूत किया, पर फुटपाथ तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया, मगर साड़ी लेना भी जरूरी था। उसकी आंखों में खूब कर गई थी, वह उसके लिए पागल हो रहा था। आखिर उसने पिछवाड़े के दरवाजे से जाने का निश्चय किया। जाकर देखा, अभी तक वहां कोई भी वॉलंटियर न था। जल्दी से एक सपाटे में भीतर चला गया और 20-25 मिनट में उसने उसी नमूने की साड़ी लेकर फिर उसी द्वार पर आ गया। पर इतनी ही देर में परिस्थिति बदल चुकी थी, 3 स्वयंसेवक आ गए थे। अमरकांत 1 मिनट तक द्वार पर दुविधा में खड़ा रहा, फिर तीर की भांति निकला और अंधाधुंध भागता चला गया। दुर्भाग्य की बात, एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली आ रही थी। अमरकांत उससे टकरा गया। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी गालियां देने। आंखों में चर्बी छा गई है क्या, देखकर नहीं चल सकते? यह जवानी ढह जाएगी एक दिन। अमरकांत के पांव आगे न जा सके। बुढ़िया को उठाया और उससे क्षमा मांग रहे थे कि 3 स्वयंसेवक उन्हें पीछे से आकर उन्हें घेर लिया। एक स्वयंसेवक ने साड़ी के पैकेट पर हाथ रखते हुए कहा, बिलाती कपड़ा ले जा रहे हो, हुक्म नहीं है क्या? बिलाती है तो सुनत नहीं हो? दूसरा बोला, आप तो ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागे। तीसरा, हजारन मनई पत्र पकड़ पकड़ी के जेलन में भरत जाते अहे, देश में आग लगी है और इनका मन बिल्लाती माल में नहीं भरा। अमरकांत ने पैकेट को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और कहा, तुम लोग मुझे जाने दोगे या नहीं? पहले स्वयंसेवक ने पैकेट पर हाथ बढ़ाते हुए, जाने कैसे देंगे, बिलायती कपड़ा लेके तुम यहाँ कबो नहीं जा सकते। अमरकांत ने पैकेट को एक झटके में छुड़ा लिया और कहा, तुम मुझे हरगिज नहीं रोक सकते। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया मगर दो स्वयंसेवक तुरंत सामने लेट गए। अब बेचारे बड़े मुश्किल में फंस गए। जिस विपत्ति से बचना चाहते थे वह जबरदस्ती गले पड़ गई। एक मिनट में 200 आदमी जमा हो गए। चारों तरफ से उन पर टिप्पणियां होने लगी, कोई जेंटलमैन मालूम होता है, यह लोग अपने को शिक्षक कहते हैं, छी, इस दुकान पर से रोज 10-5 आदमी गिरफ्तार होते हैं, पर आपको इसकी क्या परवाह, कपड़ा छीन लो और कह दो जाकर पुलिस में रपट करे। बेचारे बेड़ियां सी पहने खड़े थे, कैसे गला छूटे इसका कोई उपाय न सूझता था। मेकूलाल पर क्रोध आ रहा था कि उसी ने यह रोग उसके सिर मढ़ा। उन्हें तो किसी सौगात की फिक्र न थी, आए वहां से कि कोई सौगात ले लो। कुछ देर तक लोग टिप्पणियां करते रहे, फिर छीन झपट शुरू हुई। किसी ने सिर से टोपी उड़ा दी, उसकी तरफ लपके तो एक ने साड़ी का पैकेट हाथ से छीन लिया, फिर वही हाथों हाथ गायब हो गई। अमरकांत ने बिगड़कर कहा, मैं जाकर पुलिस में रिपोर्ट कराता हूँ। एक आदमी ने कहा, हाँ हाँ जाओ और हम सबको फांसी चढ़वा दो। सहसा एक युवती खद्दर की साड़ी पहने एक थैला लिए आ निकली। यहाँ का हुड़दंग देखकर बोली, क्या मालूमात है, तुम लोग क्यों इस भले आदमी को दिक कर रहे हो? अमरकांत की जान में जान आई, उसके पास जाकर फरियादी करने लगा, ये लोग मेरे कपड़े छीनकर भाग गए हैं और उन्हें गायब कर दिया है, मैं इस पे डाका कहता हूँ, यह चोरी है, मैं इसे न सत्याग्रह कहूँगा न देश प्रेम। युवती ने दिलासा दिया, घबराइए नहीं, आपके कपड़े मिल जाएंगे, होंगे तो यहीं लोगों के पास, कैसे कपड़े थे? एक स्वयंसेवक बोला, बहन जी इन्होंने हासिम की दुकान से कपड़े लिए हैं। युवती, किसी की दुकान से लिए हो, तुम्हें उनके हाथ से कपड़ा छीनने का कोई अधिकार नहीं है, आपके कपड़े वापस ला दो, किसके पास है? एक क्षण में अमरकांत की साड़ी जैसे हाथों हाथ गई थी वैसे ही हाथों हाथ वापस आ गई। जरा देर में भीड़ भी गायब हो गई, स्वयंसेवक भी चले गए। अमरकांत ने युवती को धन्यवाद देते हुए कहा, आप इस समय न आई होती तो इन लोगों ने धोती तो गायब कर ही दी थी, शायद मेरी खबर भी लेते। युवती ने सरल भर्त्सना के स्वर में कहा, जनसम्मति का लिहाज सभी को करना पड़ता है, मगर आपने इस दुकान से कपड़े ही लिए क्यों, जब आप देख रहे हैं कि वहां हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, फिर भी आप न माने। जो लोग समझकर भी नहीं समझते उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अमरकांत इस समय लज्जित हो गए और मित्रों में बैठकर वे जो स्वेच्छा के राग अलापते थे वह भूल गए थे। बोले, मैंने अपने लिए नहीं खरीदे हैं, एक महिला की फरमाइश थी इसलिए मजबूर था। उन महिला को आपने समझाया नहीं? आप समझाती तो शायद समझ पाती, मेरे समझाने से तो न समझी। कभी अवसर मिला तो जरूर समझाने की चेष्टा करूंगी। पुरुषों की नकेल महिलाओं के हाथ में है। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? सादतगंज में। शुभ नाम? अमरकांत। युवती ने तुरंत जरा सा घूंघट खींच लिया और सिर झुकाकर संकोच और स्नेह स्वर में बोली, आपकी पत्नी तो आपके घर में नहीं है, फिर उनकी फरमाइश कैसे? अमरकांत ने चकित होकर पूछा, आप किस मोहल्ले में रहती हैं? सियाड़ी मंडी। आपका नाम? सुखदा देवी तो नहीं? हो सकता है, इस नाम की कई स्त्रियां हैं, उस नाम के भी तो कई आदमी हो सकते हैं। अमरकांत ने जेब से दिया सलाई निकाली और वहीं सुखदा के सामने उस साड़ी को जला दिया। सुखदा ने कहा, आप कल आएंगे? अमरकांत ने अवरुद्ध कंठ से कहा, नहीं सुखदा, जब तक इसका प्रायश्चित न कर लूँ न आऊँगा। सुखदा कुछ और कहने जा रही थी कि अमरकांत तेजी से कदम बढ़ाकर दूसरी तरफ चले गए। आज होली है, मगर आज़ादी के मतवालों के लिए न होली है न बसंत। हाशिम की दुकान पर आज भी पिकेटिंग हो रही है और तमाशाई आज भी जमा है। आज से स्वयंसेवकों में अमरकांत भी खड़े पिकेटिंग कर रहे हैं। उनकी देह पर खद्दर का कुर्ता है और खद्दर की धोती, हाथ में तिरंगा झंडा लिए है। एक स्वयंसेवक ने कहा, पानीदारों को यों बात लगती है, कल तुम क्या थे आज क्या हो? सुखदा देवी ना आ जाती तो तुम बड़ी मुश्किल होती। अमरकांत ने कहा, मैं उनके लिए तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, नहीं मैं आज यहाँ न होता। आज तुम्हें न आना चाहिए था। सुखदा बहन तो कहती थी, आज मैं उन्हें न जाने दूंगी। कल के अपमान के बाद मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। जब वह रमणी होकर इतना कुछ कर सकती हैं, तो हम तो इस तरह के कष्ट उठाने के लिए ही बने हैं, खासकर जब बाल बच्चों का भार सिर पर न हो। उसी वक्त पुलिस की लारी आई और सब इंस्पेक्टर उतरा और स्वयंसेवकों के पास आकर बोला, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। वंदे मातरम की ध्वनि हुई, तमाशाइयों में कुछ हलचल हुई, लोग दो दो कदम आगे बढ़ाए। स्वयंसेवकों ने दर्शकों को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए लारी में जा बैठे। अमरकांत सबसे आगे थे, लारी चलना ही चाहती थी कि सुखदा किसी तरफ से दौड़ती हुई सामने आ गई और उसके हाथ में एक पुष्प माला थी। लारी का द्वार खुला था, उसने ऊपर चढ़कर अमरकांत के गले में माला डाल दी। आंखों से स्नेह और गर्व की दो बूंदें टपक पड़ी। लारी चली गई। यही होली थी, यही होली का आनंद मिलन था। उसी वक्त सुखदा दुकान पर खड़ी होकर बोली, विलायती कपड़े खरीदना और पहनना देशद्रोह है।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेशन।